As we were singing, I was deeply moved.
जब हम देख रहे थे, मैं बहुत गहन रूप से प्रभावित हुआ था कि इस क्षण हजारों शायद लाखों विश्वासी सदस्य 200 देशों में लगभग 75 भाषाओं में मिलकर अपनी आवाज उठाकर गा रहे थे.
Raising our voices to God, singing, Come, O thou King of Kings, we've waited long for thee. With healing in thy wings to set thy people free. Come, O thou King of Kings.
Come, thou King of Kings. हम बहुत एक विशाल व्यापक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं.
Disciples of the Lord Jesus Christ.
चाहे आप यहाँ कॉन्फ्रेंस सेंटर में बैठे या गिरजे में घर में,
we pledge that we will remember him and keep his commandments. We are far from perfect, but we are not casual in our faith. We believe in him, we worship him, we follow him, we deeply love him.
हम उसकी आराधना करते हैं, हम उसका अनुसरण करते हैं, हम उसके अत्यधिक प्रेम करते हैं. उसका कार्य संपूर्ण विश्व में महत्व है. भाइयों बहनों, हम प्रभु के दैत्य आगमन से पूर्ण के समय में रह रहे हैं, एक ऐसा समय जिसकी विश्वासियों को युग में प्रतीक्षा थी. हम युद्धों और युद्धों की अफवाहों के समय में रहते हैं, प्रकृति आपात के समय में, ऐसे समय में जब विश्वास में अव्यवस्था और उत्तेजन के कारण खींचा तान हो रही है. लेकिन हम पुनरुत्थान के समय में भी रह रहे हैं, जब सुसमाचार का संपूर्ण विश्व में ले जाया जा रहा है. एक ऐसा समय जब प्रभु ने प्रतिज्ञा की थी कि वह पवित्र लोगों को खड़ा करेगा और उन्हें धार्मिकता और परमेश्वर की शक्ति से लैस करेगा. हम इन समयों में और प्रार्थनाओं में आनंद होते हैं. हम साहस के समय अपने संघर्षों और अनिश्चितताओं का सामना करने की आशा करते हैं. कुछ कठिनाइयां दूसरों से अधिक कष्टदायक होती हैं, लेकिन इनसे कोई नहीं बच सकता. एल्डर नी ए मैक्सवेल ने एक बार मुझसे कहा था, यदि आपके लिए सब कुछ ठीक हो रहा है तो बस प्रतीक्षा करो. यही हमारी नाश्वरता है. यद्यपि प्रभु ने हमें बार बार आश्वासन दिया कि हमें डरने की आवश्यकता नहीं, एक स्पष्ट दृष्टिकोण रखते हुए जो इस संसार से आगे की ओर देखता है, हम हमेशा आसान नहीं होता जब हम कठिनाइयों के बीच में रहते हो. अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन ने मुझे अनंत दृष्टिकोण रखने के लिए एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया था. 18 साल पहले स्विट्जरलैंड में अध्यक्ष मॉन्सन के साथ ट्रेन में सफर करते हुए मैंने उनसे उनकी भारी जिम्मेदारियों के बारे में पूछा था. उनके जवाब ने मेरे विश्वास को मजबूती दी थी. प्रथम अध्यक्षता में अध्यक्ष मॉन्सन ने कहा, हम इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन ये प्रभु का कार्य है और वह इसका निर्देशन करता है. उसके हाथों में पतवार है. हमें आश्चर्य होता है जब हम उसे ऐसे असुरों की रचना करते देखते हैं जो हम नहीं रच सकते, और उसे ऐसे चमत्कार करते देखते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते. भाइयों और बहनों, पृथ्वी पर उसके राज्य की स्थापित करने में प्रभु के चमत्कारों को देखने और विश्वास करने से हमें अपने स्वयं के जीवनों में भी प्रभु के हाथों का काम करते देखने और विश्वास करने में मदद मिल सकती है. प्रभु ने कहा था, मैं अपने स्वयं का कार्य करने में समर्थ हूँ. हम में से प्रत्येक अपने हिस्से का कार्य करने का प्रयास करता है, लेकिन सब कामों की काम करने वाला वही है. अपने पिता के निर्देशन में उसने इस संसार की रचना की थी. सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें भी कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई. मैं एक उदाहरण देता हूँ.
Let me share an example. In 1831, with only 600 members,
1831 में गिरजे के केवल 600 सदस्यों के साथ प्रभु ने कहा था, परमेश्वर के राज्य की कुंजियां पृथ्वी पर मनुष्य को सौंप दी गई हैं, और अब से सुसमाचार पृथ्वी के अंतिम छोरों तक जाएगा, एक ऐसे पत्थर के समान जो किसी के हाथ बिन खेदे पहाड़ों से उखड़ आगे बढ़ेगा जब हम सारी पृथ्वी को न ढक लें. भविष्यवक्ता नेफाई ने अपनी भविष्य देख लिया था कि गिरजे के सदस्य पृथ्वी की जनसंख्या की तुलना में कम होंगे, लेकिन वे संपूर्ण पृथ्वी पर होंगे. अपने राज्य की स्थापना करने के प्रभु के हाथ के तीन सुंदर उदाहरण के तीन मंदिर हैं, जिसकी घोषणा आज अध्यक्ष मॉन्सन ने की है। केवल कुछ दशक पहले कौन कल्पना कर सकता था कि हाइती, थाईलैंड और आइवरी कोस्ट में मंदिर होंगे। मंदिर के स्थान का निर्णय लेना सरल नहीं है। ये प्रभु के भविष्यवक्ता को प्राकृतिकरण द्वारा दिया जाता है, जो कि एक महत्वपूर्ण और संतों की धार्मिकता का कार्य को देख दर्शाता है, जो उसके घर को पीढ़ियों तक संजोकर रखेंगे और देखभाल करेंगे। मेरी पत्नी कैथी और मैं 2 साल पहले हेती गए थे। ऊंचे पहाड़ पर पॉट डाओ प्रिंस को देखते हुए हमारे साथ हेती के संत तब एल्डर थॉमस मॉन्सन द्वारा देश के केवल 30 पहले हुए संपन्न दिवस को मनाने शामिल हुए थे। हम में से कोई भी 2010 में आए विनाशकारी भूकंप को कभी नहीं भूल पाएगा। विश्वसनीय सदस्यों और साहसी प्रचारकों के समूह के साथ, जिसमें लगभग सभी हेती के निवासी हैं, गिरजी ने इस द्वीप के निरंतर विकास किया और मजबूत हुआ है। परमेश्वर के संतों को सफेद वस्त्रों में प्रभु के पवित्र में पवित्र पोहते की शक्ति का निर्देश करते हुए और पवित्र रीतियों को करते देख मेरे विश्वास को मजबूत करता है। कौन कल्पना कर सकता था कि थाईलैंड के सुंदर शहर बैंकॉक में प्रभु का घर बनेगा। मुख्य रूप से बुद्ध देश थाईलैंड में ईसाई केवल 1% है। हेती के समान बैंकॉक में भी पृथ्वी ने चुने हुओं को एकत्रित किया है। कुछ महीने पहले वहां के दौरे में हम सतियत एन गुसावाद से मिले थे। सतियती 17 वर्ष की आयु में गिरजे में शामिल हुआ था। उसने अपनी मातृभूमि में मिशन की सेवा की थी। बाद में वे ग्रीव में इंस्टीट्यूट क्लास में मिला था और मनीला मंदिर में मोहरबंद हुए थे। 1993 में कायवतुवंतन परिवार को एक ट्रक ने टक्कर मारी थी, जिसका ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए सो गया था। सतियती को छाती से नीचे लकवा मार गया था। उसका विश्वास कभी डगमगाया नहीं। सतियत बैंकॉक में इंटरनेशनल स्कूल का पसंदीदा अध्यापक है। वह थाईलैंड के उत्तरी स्टेक का अध्यक्ष है। परमेश्वर चमत्कार उसके कार्य हमारे व्यक्तिगत जीवन में होता है। आइवरी कोस्ट में गिरती के चमत्कार को बिना 2 कंपनियां फिलिपी एंड एनियस एसोटा और लाउसियस और एगेथा एफओस के नाम लिए नहीं बताए जा सके। वे गिरती में युवा विवाहिती दंपतियों के रूप में यूरोप में शामिल हुए थे, एक जर्मनी में, एक दूसरा फ्रांस में। 1980 के दशक में एक दूसरे को जाना जानते हुए फिलिपी और लुसिया ने महसूस किया कि उन्हें अपनी जन्मभूमि अफ्रीका देश परमेश्वर का राज्य बनाने की उद्देश्य से वापस जाना चाहिए। बहन औसत जो कि जर्मन है, अपने परिवार को छोड़कर और भाई औसत को स्थापित मैकेनिकल इंजन के कार्य को छोड़ने के लिए अध्यात्मिक विश्वास चाहिए था। दोनों दंपति एक दूसरे से पहली बार आइवरी कोस्ट में मिले और संडे स्कूल में शुरू किया। ये 30 साल पहले हुआ था। अब वहाँ एक सुंदर अफ्रीकी देश के 8 स्टेक और 27,000 सदस्य हैं। अफ्रीला दंपति उदारता में निरंतर सेवा करती है, जैसे असौर दंपति रही है, जिन्होंने हाल ही में अक्रॉस गायना मंदिर में मिशन समाप्त किया है। क्या आप परमेश्वर के कार्य में उनके हाथ को देख सकते हैं? क्या आप हेती के प्रचारों के जीवनों में या थाईलैंड के कायवेलो तनेस के जीवनों में परमेश्वर के कार्य में उसके हाथ को देख सकते हैं? क्या आप अफाउल दंपति अनासार दंपति के जीवनों में परमेश्वर के हाथ को देख सकते हैं? क्या आप अपने स्वयं के जीवन परमेश्वर के हाथ को देख सकते हैं? और कोई मनुष्य किसी भी कार्य में परमेश्वर का इतना अपमान नहीं करता सिवाय उनके जो सभी कार्य में उसके हाथ को स्वीकार नहीं करते। परमेश्वर के चमत्कार केवल हेती, थाईलैंड या आइवरी कोस्ट में ही नहीं हो रहे। अपने आसपास देखें, उसका हाथ वहां भी है। परमेश्वर हर एक लिए के लिए सचेत है। हाँ, वह अपने लोगों को गिनना और उनकी दया का कटोरा पूरी पृथ्वी पर है। कभी कभी हम दूसरों के जीवन में प्रभु के हाथ को देख सकते हैं, लेकिन आश्चर्य करते हैं मैं कैसे उसके हाथ को अपने स्वयं के जीवन में स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ। उतारकर्ता ने कहा, संदेह ना करो, मत डर, केवल विश्वास कर। तुम्हारे पिता के जाने बिना एक गौरैया भी जीवन भूमि पर नहीं गिर सकती, इसलिए डरे नहीं, क्योंकि तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। उस युवक को याद करें जिसने संकट में भविष्यवक्ता एलिशा को पुकारा था जब वे शत्रुओं से घिर गए थे। हाथ हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें। एलिशा ने जवाब दिया, फिर डरो मत, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उसकी ओर है। और एलिशा ने प्रार्थना की, प्रभु उसकी आंखें खोल दी कि वह यह देख सके। तब प्रभु ने युवक की आंखें खोल दी और उसने देखा कि पहाड़ पर चारों ओर घोड़े और अग्नि रथ खड़े थे। जब आप अपने जीवन में प्रभु के हाथ देखने के लिए विश्वास से प्रार्थना करते हो, वह आपकी आत्मिक आंखों अच्छी तरह खोल देगा और आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि आप अकेले नहीं है। धर्मशास्त्र सिखाते हैं कि हम भविष्य की उन बातों पर विश्वास से डर रहे। भविष्य की बातें क्या हैं? उद्धारकर्ता ने प्रार्थना की थी, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र मान जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। परमेश्वर का राज्य आगे बढ़े और उसने घोषणा की ताकि स्वर्ग का राज्य आए। हमने अभी गीत गाया था, हमारा विश्वास बढ़ता है जब हम उद्धारकर्ता की वापसी की प्रतीक्षा करते हैं। उसके आगमन के विचार उत्तेजित हो जाती है। यह बहुत भव्य होगा। इसकी व्यापकता और भाविकता, विशालता और व्यवहार उन सब से अधिक होगी जिसे कभी नाश्वर आंखें ना देख या अनुभव किया होगा। उस दिन वह कपड़ों में लिपटा चरनी में नहीं आएगा, लेकिन वह स्वर्ग के कपड़ों में शक्ति और महान महिमा में लिपटा अपने सभी पवित्र स्वर्गदूतों के साथ प्रकट होगा। हम प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। सूर्य और चांद बल जाएंगे और तारे अपने स्थानों से हट जाएंगे और आप और मैं या वे जो हमारा अनुसरण करते हैं पृथ्वी के हर कोने से संत उत्साहित हो उठेंगे और उससे मिलने के लिए उठा लिए जाएंगे। जो धार्मिकता में मर गए और वे भी उससे मिलने के लिए स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। फिर एक अनुभव जिसकी कल्पना करना असंभव लगता है, सभी जीवित कहलाता है, मुझे एक साथ दिखेंगे। ये कैसा होगा हम नहीं जानते, लेकिन मैं गवाही देता हूँ कि यह होगा बिल्कुल वैसे ही जैसे भविष्यवाणी की गई है। हम श्रद्धा में झुकेंगे और प्रभु अपनी वाणी में बोलेगा और पृथ्वी के दूर दूर देश इसे सुनेंगे और ये ऐसी होगी जैसे जल की बहुत धाराएं और बड़े गर्जन का शब्द। फिर प्रभु उद्धारकर्ता अपने लोगों के मध्य खड़ा होगा। स्वर्ग के दूतों और संतों को पृथ्वी का अविस्मरणीय मिलना होगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, जैसा यशया बताता है, पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग हमारे परमेश्वर का उद्धार देखेंगे और वे सब लोगों पर शासन करेगा। उस दिन संदेश करने वाले शांत होंगे क्योंकि सभी उसे सुनेंगे और हर एक घुटना झुकेगा और एक जीव स्वीकार करेगी कि यीशु ही मसीह परमेश्वर का पुत्र उद्धारकर्ता संसार का मुक्तिदाता है। आज ईस्टर है। हम संपूर्ण संसार के साथ उसके भव्य पुनरुत्थान में और हमारा स्वयं का वादा किया गया पुनरुत्थान में आनंदित हैं। इन भव्य घटनाओं को बार बार अपने स्वयं के मन में और अपने परिवार और मित्रों के साथ अध्ययन करते हुए उसके वापस आने की तैयारी करें। मैं आशा करता हूँ उसकी प्रार्थना हमारी प्रार्थना हो। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। मैं गवाही देता हूँ कि वह जीवित है यीशु मसीह के नाम में। आमेन।